एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथसार में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम उपन्यास पर बात करने वाले हैं, किरण देसाई का द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। 2006 में आया था ये, और आते ही इसे मैन बुकर प्राइज मिला।
हाँ बिल्कुल, और किरण देसाई खुद अनीता देसाई की बेटी हैं, और उनकी परवरिश मतलब भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, तो वो जो कल्चर का टकराव है, पहचान का सवाल है, वो उनकी लेखनी में बहुत गहराई से उतरता है।
सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस उपन्यास की जो अलग अलग परतें हैं उनको थोड़ा खोलें, कहानी तो समझेंगे ही, किरदारों के इमोशनल सफर को भी देखेंगे, और सबसे जरूरी वो जो सेंट्रल आइडिया है ना, हानि की विरासत।
लॉस की इनहेरिटेंस।
हाँ,
हाँ
मतलब वो नुकसान जो सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि पहचान का है, अपनेपन का है, इज्जत का है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे मिलता है।
बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 1980s के मिड में। जगह है कलिम्पोंग, हिमालय की गोद में बसा हुआ शहर। तो नज़ारा तो खूबसूरत है, धुंध है, कंचनजंगा दिखता है, पर माहौल में ना एक तरह की उदासी है, एक बिखराव सा महसूस होता है।
और कहानी का सेंटर पॉइंट है एक बंगला, चो ओयू।
हाँ, चो ओयू, एक पुराना जर्जर सा बंगला। शायद कभी इसकी शान रही होगी, पर अब तो बस गुजरे वक्त की एक परछाई जैसा है।
और इसमें रहने वाले लोग वो भी तो इसी बिखराव का हिस्सा लगते हैं।
बिल्कुल, मेन कैरेक्टर है रिटायर्ड जज जेमू भाई पटेल। काफी कड़वे स्वभाव के, अकेले, और पूरी जिंदगी उन्होंने जैसे अपनी इंडियन आइडेंटिटी को मिटाने में लगा दी, अंग्रेज बनने की कोशिश में। उनके साथ रहती है उनकी पोती साय, टीनेजर है, अनाथ है, और वो बिचारी अपने दादा के इस रूखेपन के बीच थोड़े से प्यार, थोड़े अपनेपन के लिए तरसती है।
और एक रसोईया भी है ना।
हाँ, उनका वफादार रसोईया, उसकी दुनिया बहुत छोटी है, बस जज साहब की सेवा और अपने बेटे बीजू के लिए सपने देखना, जो अमेरिका गया है। तो इस घर में ना एक अजीब सी खामोशी है, जैसे तूफान से पहले की शांति होती है ना, वैसी।
और वो शांति फिर भंग होती है, बल्कि दो तरफ से होता है ये।
हाँ, दो तरफ से, एक तरफ तो साये और उसका नेपाली ट्यूटर है ज्ञान, उनके बीच एक बहुत ही मासूम सा, नाजुक सा रोमांस शुरू होता है, जैसे दो अलग दुनियाओं के मिलने की एक हल्की सी उम्मीद जगी हो।
लेकिन बाहर कुछ और ही पकड़ा होता है।
बिल्कुल। दूसरी तरफ और ज्यादा विस्फोटक तरीके से बाहर हलचल शुरू होती है, जो नेपाली बोलने वाले गोरखा हैं वो अपने लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर आवाज उठाते हैं, और धीरे धीरे ये आंदोलन हिंसक हो जाता है।
और ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहता फिर।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उस इलाके में जो सालों से दबे हुए जाति तनाव थे, क्लास डिफरेंस थे, उन सबको सत्ता पर ले आता है, और इसकी गूंज या कहें तपिश चो ओयू के दरवाजे तक पहुंच जाती है।
और यहीं पर वो उपन्यास का जो कोर आइडिया है, हानि की विरासत, वो और ज्यादा गहरा लगने लगता
है ना?
ये सिर्फ प्रॉपर्टी की विरासत नहीं है,
नहीं,
ये पहचान खोने की, कल्चर खोने की, कहीं का न रह पाने की विरासत है। देसाई जैसे पूछ रही हैं कि भाई कोई इंसान ऐसी दुनिया में अपनी जगह कैसे तलाशे जहां वो हर जगह बाहरी है, आउटसाइडर है।
बिल्कुल सही।
और इस सवाल को वो दो अलग अलग लेकिन जुड़ी हुई कहानियों से एक्सप्लोर करती हैं।
हाँ, ये ड्यूल नैरेटिव बड़ा दिलचस्प है।
एकदम, एक कहानी तो ये कलिम्पोंग वाली है, जज, साई, रसोईया, ये लोग जूझ रहे हैं कॉलोनियलिज्म की लेगेसी से, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से, और इसी के पैरेलल हजारों मील दूर न्यूयॉर्क में,
न्यूयॉर्क में है रसोइये का बेटा बीजू।
हाँ बीजू, वो वहां एक इल्लीगल इमिग्रेंट है, और उसकी कहानी हमें दिखाती है ग्लोबलाइजेशन की चकाचौंध के पीछे का अंधेरा, उसकी क्रूर सच्चाई।
ये जो कंट्रास्ट है ना, एक तरफ हिमालय की वो शांत उदासी सी भव्यता, दूसरी तरफ न्यूयॉर्क का वो भीड़ भरा अकेला कर देने वाला शोर, कमाल का है।
बहुत पावरफुल है। ऐसा लगता है जैसे दूरी कोई मायने नहीं रखती, किरदार कहीं भी हों, कलिम्पोंग में या न्यूयॉर्क में, वो एक ही दर्द महसूस कर रहे हैं, अपनी जड़ों से उखड़ने का दर्द, घर की तलाश का दर्द।
चलिए इन किरदारों के अंदर थोड़ा और उतरते हैं। जज जेमू भाई पटेल से शुरू करें, उनका कैरेक्टर तो जैसे उपनिवेशवाद के जख्मों का जीता जागता दुखद सबूत है।
बिल्कुल, एक ट्रेजिक फिगर है वो। उनकी पूरी कहानी सेल्फ हेट्रिड, आत्मघृणा से भरी हुई है। जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, तो वहां उन्होंने जो रेसिज्म झेला, जो बेइज्जती सही, उसने उन्हें अपनी इंडियानस से ही नफरत करना सिखा दिया।
फिर पूरी जिंदगी उन्होंने अंग्रेज बनने की एक हताश कोशिश की, अपनी संस्कृति छोड़ी, भाषा छोड़ी, यहाँ तक कि अपनी पत्नी निमी।
अपनी पत्नी के साथ भी उनका बर्ताव बहुत कठोर था।
हाँ, क्योंकि निमी उन्हें उनकी असभ्य भारतीयता की याद दिलाती थी जिससे वो नफरत करते थे, तो उन्होंने उसे इमोशनली और शायद फिजिकली भी कुचल दिया। अब बुढ़ापे में वो बस एक खोखले इंसान है, रूटीन बड़ा सख्त है लेकिन अंदर से खालीपन है। उनका कुत्ता है मठ, शायद वही उनका अकेला साथी है।
और ये जो उनका अतीत है, ये सिर्फ फ्लैशबैक में नहीं है, ये उनके आज को भी लगातार प्रभावित करता है। जब गोरखा आंदोलन उनके दरवाजे पर आता है, तो क्या ये उन्हें अपने जीवन के इस खोखलेपन से आमना सामना कराता है?
हाँ बिल्कुल, ये जो बाहर की उथल पुथल है ना, ये जैसे उनके अंदर के खालीपन को और ज्यादा उभार देती है। उन्हें शायद ये एहसास होता है कि जिस अंग्रेजियत का चोला उन्होंने ओढ़ा, उसने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, ना यहाँ का ना वहां का। अंत में अपनी पोती साई के साथ भी उनका जो रिश्ता है वो किसी गहरी चुप्पी और एक अनकहे साझा दर्द पर ही टिका हुआ है।
और साई, वो इस विरासत को कैसे जीती है? कहानी का इमोशनल सेंटर तो वही लगती है।
हाँ, साई की कहानी एक तरह की कमिंग ऑफ एज जर्नी है, लेकिन जो बहुत बेरहमी से बीच में ही टूट जाती है। वो अनाथ है, कॉन्वेंट में पढ़ी, फिर दादा के इस एंग्लोफाइल माहौल में पली बड़ी, तो वो कल्चरली कहीं ना कहीं खोई हुई है, अपनी जड़ों से कटी हुई।
उसे समझ नहीं आता कि वो कौन है।
बिल्कुल, और ज्ञान के साथ उसका जो रिश्ता है वो सिर्फ पहला प्यार नहीं है, वो जुड़ने की एक कोशिश है, अपनी पहचान तलाशने की कोशिश है। उसे लगता है कि शायद प्यार ये जो सोशल और कल्चरल दीवारें हैं इनको तोड़ सकता है।
लेकिन असलियत कुछ और निकलती है। पॉलिटिकल रियलिटी उनके पर्सनल रिश्ते पर भारी पड़ जाती है।
हाँ, जब गोरखा आंदोलन जोर पकड़ता है तो ज्ञान, जो शायद अपनी नेपाली पहचान और अपनी सोशल स्टैंडिंग को लेके हमेशा थोड़ा इनसिक्योर रहा था, वो उस आंदोलन की जो क्रांतिकारी भावना है उसमें बह जाता है।
उससे वहां एक पहचान मिलती है। हाँ,
उसे वो पहचान, वो अपनेपन का एहसास मिलता है जो शायद साई के साथ रिश्ते में उसे नहीं मिल पा रहा था। और आखिरकार वो साई और जज को धोखा दे देता है, विद्रोहियों को उनके बारे में बता देता है,
उफ।
और ये जो धोखा है ये साई की मासूमियत को चकनाचूर कर देता है। उसे ये समझ आता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी किताबों में या रोमांटिक ख्यालों में होती है। उसे पहचान की राजनीति का, क्लास के फर्क का और इस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि प्यार हमेशा इतिहास और पॉलिटिक्स से नहीं जीत पाता।
ये जो पर्सनल और पॉलिटिकल का टकराव है, ये बहुत मार्मिक तरीके से दिखाया है। ज्ञान का किरदार क्या दिखाता है कि कैसे पर्सनल इनसिक्योरिटीज पॉलिटिकल कट्टरता में बदल सकती हैं?
बिल्कुल, ज्ञान की कहानी यही दिखाती है। वो शुरू में साई की दुनिया, उसकी किताबों, उसकी प्रिविलेज से आकर्षित होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी जड़ों से भी जुड़ना चाहता है। और जब आंदोलन उसे वो मौका देता है तो वो जैसे अपनी इनसिक्योरिटीज का जवाब ढूंढ लेता है, भले ही उसकी कीमत उसे साई का भरोसा तोड़कर चुकानी पड़ती है। बाद में उसे पछतावा भी होता है, पर तब तक नुकसान हो चुका होता है।
और दूसरी तरफ, हजारों मील दूर न्यूयॉर्क में बीजू, उसकी कहानी तो जैसे इसी हानि का एक दूसरा चेहरा है ना?
हाँ, ग्लोबलाइजेशन के दौर में खोई हुई पहचान।
हाँ, बीजू की कहानी तो दिल दहला देती है। वो रसोइये का बेटा है, जब वो अमेरिका गया था तो घर में कितनी उम्मीदें थीं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलट है। वो न्यूयॉर्क में एक इल्लीगल वर्कर है, उस अदृश्य भीड़ का हिस्सा जो बड़े शहरों की मशीनरी को चलाती तो है, पर खुद शोषण और बेइज्जती के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसी रहती है।
एक किचन से दूसरे किचन, हाँ, एक बेसमेंट किचन से दूसरे में भटकता रहता है, कभी गरम बेकरी, कभी गंदे चीनी रेस्टोरेंट्स, कभी फैंसी फ्रेंच किचन, लेकिन हर जगह वो एक परछाई जैसा है, इनविजिबल, जिसे कोई देखना नहीं चाहता, जिसका बस इस्तेमाल करना है।
तो वो अमेरिकन ड्रीम उसके लिए एक बुरे सपने जैसा बन जाता है।
बिल्कुल, उसे सिर्फ वाइट अमेरिकन से नहीं, दूसरे इमिग्रेंट से भी रेसिज्म झेलना पड़ता है, भयानक अकेलापन है। वो दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है ना, पूरी तरह अमेरिकी बन पाता है ना, उस भारत से जुड़ पाता है जिससे वो पीछे छोड़ आया है। पैसे कमाने की कोशिश में वो अपनी सारी बचत गंवा देता है, अपनी सेहत खराब कर लेता है, अपनी इज्जत खो देता है, और अंत में जब वो भारत लौटने का फैसला करता है तो ये एक तरह से उसकी हार है, लेकिन शायद कहीं अपनी जड़ें जमाने की एक आखिरी हताश कोशिश भी।
और जब वो लौटता है तो खाली हाथ।
बिल्कुल खाली हाथ, सिवाय उस हानि के जिसे वो जीता जागता अपने साथ ढोकर ला रहा है।
और बेचारा रसोईया, जो इतने सपने देख रहा था अपने बेटे के लिए, उसका क्या होता है?
रसोईया, जिसका नाम तक नहीं लिया गया उपन्यास में,
शायद उसकी सोशल पोजीशन दिखाने के लिए उसकी भी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। पहले उसे बीजू की असलियत पता चलती है, फिर गोरखा विद्रोही आते हैं और उसका जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा सामान होता है, उसकी इज्जत होती है, सब लूट लेते हैं।
बहुत दुखद है।
हाँ, और जब आखिर में बीजू खाली हाथ लौटता है तो बाप बेटे का वो जो मिलना है बिना शब्दों के, जहां दोनों की हार, दोनों का दर्द साफ झलकता है, वो शायद उपन्यास के सबसे पावरफुल मोमेंट्स में से एक है।
तो ये सारे किरदार अपनी अपनी तरह से इस हानि को जी रहे हैं। कहानी आगे कैसे बढ़ती है? ये टेंशन कैसे अपने पीक पर पहुंचते हैं?
कहानी की शुरुआत ही उस पहले अटैक से होती है जब कुछ विद्रोही जज के घर में घुसकर उनकी पुरानी राइफलें चुरा लेते हैं। ये जैसे उस सेफ बबल को फोड़ देता है जिसमें वो लोग जी रहे हैं।
हाँ,
साई और ज्ञान का रोमांस इसी बढ़ते हुए टेंशन के बैकग्राउंड में पनपता है और फिर टूट जाता है। बाहर गोरखा आंदोलन तेज होता जाता है, हड़तालें, हिंसा, ब्लॉकेड। जज के अतीत के जो फ्लैशबैक हैं वो हमें दिखाते हैं कि उनकी आज की कड़वाहट की जड़ें कितनी गहरी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ क्या किया था।
और टर्निंग पॉइंट कब आता है? जब ज्ञान धोखा देता है।
हाँ, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है जब ज्ञान शायद आंदोलन के दबाव में या अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से जज की बची खुची कीमती चीजों के बारे में विद्रोहियों को बता देता है। इसके बाद घर पर दूसरा हमला होता है जो ज्यादा क्रूर होता है। रसोइये को बहुत बेइज्जत किया जाता है
और यहीं साई और ज्ञान का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
हाँ, वो पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद तो जैसे सब कुछ बिखरने लगता है, पॉलिटिकल माहौल खराब होता जाता है, खाने पीने की कमी हो जाती है, डर बढ़ जाता है। चोयू का वो जो एक शांत प्रिविलेज्ड जीवन था वो पूरी तरह ढह जाता है। उधर न्यूयॉर्क में बीजू की सारी सेविंग्स चोरी हो जाती हैं और वो एक नकली ग्रीन कार्ड से किसी तरह टिकट खरीद कर टूटे फूटे हाल में घर लौटता है।
इस पूरी कहानी और किरदारों के सफर से जो बड़े थीम्स उभरते हैं उन पे थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहला तो यही है, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी का संकट है ना। जज का कैरेक्टर तो जैसे इसी का प्रतीक है।
बिल्कुल, उपन्यास ये दिखाता है कि कॉलोनियलिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था, उसने लोगों के मन पर, उनकी साइकी पर गहरे घाव छोड़े। जज जैसे लोग अपनी जड़ों से कट गए, अपनी ही संस्कृति से नफरत करने लगे।
और ये कन्फ्यूजन, ये अलगाव अगली पीढ़ी जैसे साई उसको विरासत में मिलता है।
हाँ, वो समझ ही नहीं पाती कि वो कौन है, उसकी जगह कहाँ है, कल्चरली वो कहीं बीच में लटकी हुई है।
दूसरा बड़ा थीम है ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन का, जो बीजू की कहानी के जरिए आता है और इसमें एक तीखी आलोचना भी छुपी है। क्यों?
हाँ बिल्कुल, ये उपन्यास अमेरिकन ड्रीम के उस चमकीले मिथक को तोड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे वेस्टर्न देशों का जो कंफर्ट है वो अक्सर बीजू जैसे अनगिनत, अदृश्य, शोषित इमिग्रेंट्स की मेहनत पर टिका होता है। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को जोड़ा जरूर, लेकिन इसने डिस्प्लेसमेंट और इनइक्वालिटी के नए रूप भी पैदा किए हैं। बीजू की कहानी उस चमक के पीछे का सच है।
और ये भी बहुत साफ दिखता है कि कैसे जो बड़ी पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल ताकतें हैं वो आम लोगों की जिंदगी को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। ये जो पर्सनल और पॉलिटिकल का कनेक्शन है।
एकदम, गोरखा आंदोलन कोई अखबार की खबर नहीं है सिर्फ, वो साई और ज्ञान की लव स्टोरी को तबाह कर देता है। ब्रिटिश राज का इतिहास जज के कैरेक्टर को बनाता है, उसकी क्रूरता का कारण बनता है। कोई भी अपनी कहानी को इतिहास के बड़े नैरेटिव से अलग नहीं कर सकता, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है।
क्लास और पावर का डायनेमिक भी तो हर जगह नजर आता है।
भारत में जज और रसोइये के रिश्ते में, गोरखा आंदोलन के पीछे जो मार्जिनलाइजेशन का गुस्सा है उसमें, और अमेरिका में भी रेस और इमिग्रेशन स्टेटस के आधार पर जो नया हायरार्की बनता है उसमें।
बिल्कुल,
उपन्यास दिखाता है कि अन्याय और शोषण के तरीके शायद बदल जाएं, लेकिन ये सिस्टम हर सोसाइटी में मौजूद है, चाहे वो पुराना फ्यूडल इंडिया हो या मॉडर्न अमेरिका। पावर का मिसयूज और एक्सप्लॉयटेशन यूनिवर्सल है।
और इन सब के बीच लगभग हर किरदार कहीं ना कहीं घर की तलाश में है, बिलोंगिंग की तलाश में है। जज इंग्लैंड में ढूंढता रहा, बीजू अमेरिका में, ज्ञान आंदोलन में, साई प्यार में। क्या किसी को मिलता है वो घर?
उपन्यास का इशारा तो यही लगता है कि ऐसी टूटी फूटी दुनिया में शायद सच्चा घर, सच्ची बिलोंगिंग मिलना बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी। घर शायद कोई फिजिकल जगह नहीं है, बल्कि वो कुछ पल है जहां लोग अपने दर्द में, अपनी कमजोरी में एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, और वो जुड़ाव भी अक्सर बहुत फ्रेजाइल, बहुत क्षणभंगुर होता है।
इन इतने गहरे और कॉम्प्लेक्स थीम्स को किरण देसाई जिस तरह कहानी में पिरोती हैं, उनके लिखने की स्टाइल भी जबरदस्त है। कहानी कहने का उनका तरीका कैसा है?
वो एक थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट नरेटर यूज करती हैं, मतलब कहानी सुनाने वाला जैसे सब कुछ जानता है, हर किरदार के मन की बात, हर जगह क्या हो रहा है। इससे हमें अलग अलग किरदारों के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में बहुत मदद मिलती है।
और कहानी लीनियर नहीं चलती है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट यानी 1980s की कहानी के साथ साथ जज के अतीत के लंबे फ्लैशबैक्स चलते रहते हैं, और ये स्ट्रक्चर भी थीम को मजबूत करता है कि देखो, अतीत कभी गुजरता नहीं है, वो हमेशा प्रेजेंट को शेप करता रहता है।
सिंबोलिज्म और इमेजिनरी का भी बहुत रिच यूज है।
हाँ, कमाल का। जैसे कंचनजंगा पहाड़ है, वो प्रकृति की विशालता, उसकी उदासीनता का प्रतीक है। इंसानों की इस छोटी मोटी उथल पुथल के सामने वो जर्जर चोयो बंगला, वो जैसे कलोनियलिज्म की सड़ती हुई विरासत का सिंबल है। बीजू का वो टूटा हुआ बिस्किट का टिन,
हाँ, उसके टूटे सपनों जैसा।
बिल्कुल। और देसाई शब्दों से ऐसी तस्वीरें बनाती हैं कि आप उस माहौल को महसूस कर सकते हैं। हिमालय की वो नम हरी धुंध भरी वादियाँ, और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के वो गरम चिकनाई वाले कॉकरोच से भरे बेसमेंट। ये कंट्रास्ट किरदारों के डिस्प्लेसमेंट के दर्द को और तीखा कर देता है।
आयरनी यानी विडम्बना, वो भी तो कहानी में भरपूर है।
कूट कूट कर भरी है। जज की पूरी जिंदगी ही एक आयरनी है। अंग्रेज बनने की कोशिश में वो एक दयनीय नकल बनकर रह जाते हैं। उपन्यास का टाइटल खुद एक आयरनी है। विरासत में क्या मिला? हानि। अमेरिका, जिसे लैंड ऑफ फ्रीडम कहते हैं, वो बीजू के लिए डर और शोषण का एक जेल बन जाता है। देसाई खूबसूरती और क्रूरता को, ह्यूमर और ट्रेजेडी को बिल्कुल साथ साथ रखती हैं। पहाड़ों की सुंदरता के बीच हिंसा होती है, प्यार के कोमल पल के ठीक बाद बेइज्जती आती है। यह दिखाता है कि जिंदगी कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी विरोधाभासी है।
तो कुल मिलाकर ये उपन्यास पाठक पर कैसा असर छोड़ता है? ये कोई हल्की फुल्की सुकून देने वाली कहानी तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक भारी उपन्यास है, उदास करने वाला। ये जीत की कहानी नहीं है, ये सर्वाइवल की, झेलने की कहानी है। आपको किरदारों से हमदर्दी होती है, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों और अपने हालात के शिकार हैं। पर ये आपके जो बने बनाए ख्याल है ना, प्यार के बारे में, घर के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में, उन सब को चैलेंज करता है।
हाँ, एक गहरी बेबसी का एहसास तो रहता है, लेकिन शायद उसके साथ साथ इंसानी जज्बे के लिए, रेजिलियंस के लिए एक खामोश तारीफ भी। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है अपने प्रिविलेज के बारे में, पावर स्ट्रक्चर्स के बारे में, और इस ग्लोबलाइज दुनिया की जो छुपी हुई कीमतें हैं उनके बारे में।
और ये सवाल छोड़ जाता है जो पढ़ने के बाद भी आपके साथ रहते हैं, कि घर होने का मतलब क्या है? क्या हम सच में अपने इतिहास से, अपनी विरासत से बच सकते हैं? और कैसे? कैसे दुनिया के एक कोने में जो हो रहा है, वो दूसरे कोने में किसी की जिंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ है?
हाँ, शायद ये उपन्यास हमें यही याद दिलाता है कि इतिहास और पहचान का बोझ कितना गहरा और कितना पर्सनल हो सकता है, अक्सर अनकहे दुखों के साथ।
बिल्कुल। और शायद ये भी कि इस सारे बिखराव और नुकसान के बीच भी कहीं ना कहीं इंसानियत के जुड़ाव की, सहानुभूति की एक बहुत महीन सी उम्मीद फिर भी टिमटिमाती रहती है।
ये संवाद यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए प्रस्तुत है एकत्र फाउंडेशन द्वारा।